أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آموزش فلسفہ میں ہماری آج بحث دسویں درس میں ہے کتاب کے مطابق، جس کا عنوان ہے ضرورت فلسفہ. ابھی تک ہماری بحث مقدماتی چل رہی تھی، بہت سارے اہم نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے اس کتاب کے توسط سے، اور یہ وہ اہم ترین نکات ہیں فلسفے کے اندر کہ جو ہر فلسفے کے طالب علم کے لیے ضروری ہیں کہ وہ جانیں. جیسا کہ اس فلسفے کی ابتدا انہوں نے تاریخ فلسفہ سے کی، ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی علم کی تاریخ کو نہیں جانیں گے تو آپ اچھے طریقے سے اس کے مسائل میں تحقیق نہیں کر پائیں گے، بہتر نتائج نہیں لے سکتے. پھر اس کے بعد عام کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا بعض مقدماتی بحثیں کہ فلسفے کی موقعیت کیا ہے، روش تعقلی و روش عقلی، ریشنل میتھڈ جسے کہتے ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیوں اس کو فوقیت دی جاتی ہے فلسفی مباحث میں، اور روش تجربی اور دوسری روشیں جو موجود ہیں ان کے اوپر. تو اب یہ تقریباً مقدماتی بحثیں جو ہیں وہ اختتام کو پہنچی. آخری بحث جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ضرورت فلسفہ ہے کہ فلسفے کی بالآخر کیا ضرورت ہے، کیوں پڑھیں ہم فلسفہ. اگرچہ جو اب تک مقدماتی بحثیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، اگر انہی کو انسان دقت سے مطالعہ کرے تو ضرورت فلسفہ اس میں سے نکل آتا ہے کہ مختلف سوالات آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، پھر اس کے جوابات جو ہیں کس طریقے سے فلسفہ جو دیتا ہے. جب ہم نے بات کی تھی کہ علوم کس طریقے سے فلسفے کی مدد کرتے ہیں، کس طریقے سے فلسفہ علوم کی مدد کرتا ہے، ضرورت فلسفہ یہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فلسفہ اگر نہ ہو تو علوم وجود میں نہیں آ سکتے، چونکہ علوم محتاج ہیں اپنے موضوع کے اس بات کے لیے کس کے، فلسفے کی طرف. مبادی تصدیقیہ کلی ترین جو ہیں وہ فلسفے نے ثابت کرنی ہے، تو لہذا اگر فلسفہ نہ ہو تو یہ مبادی جو ہیں وہ بحث نہیں کی جا سکتی، اور وہ اصول اور قواعد اس بات نہیں کیے جا سکتے جن کے توسط سے آپ علوم میں جا کر اس علم کے مسائل کو ثابت کر پائیں گے. لیکن پھر بھی انسان کی زندگی کے اندر فلسفے کی کیا اہمیت ہے، اس کو بے عنوان درس جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں اس مطلب کو، تاکہ ہر طالب علم کو پتہ چلے کہ بالآخر فلسفہ کیوں ضروری ہے. آیا فلسفے کے بغیر آپ سعادت تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ سعادت کے پیچھے ہے. آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو کہے کہ میں تو ایویں ہی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے سعادت نام کی چیز چاہیے ہی نہیں. نہیں، ہر انسان سعادت کے پیچھے ہے، سعادت مند زندگی کے پیچھے ہے. اور سعادت مند زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ اس وہ زندگی کے جو انسان کے تکامل میں اس کی مدد کرے، وہ زندگی کے جو انسان کو کمال تک پہنچائے. کون سا انسان ہے کہ جو کمال کی نفی کرتا ہو، کمال کا طالب نہ ہو؟ ہر انسان طالب ہے کمال کا. ہاں یہ بات درست ہے کہ انسان اپنے کمال کی تشخیص میں خطا کر جاتا ہے. کوئی انسان جو ہے وہ مال و دولت کے اندر کمال کو سمجھتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کوئی انسان کسی اور چیز میں کمال کو دیکھتا ہے اور اس کو تشخیص دیتا ہے کہ یہ میرے لیے کمال ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے لگ جاتا ہے. तो लिहाजा हर इंसान सआदत तक पहुंचना चाहता है। और अगर हम दीनी एतबार से सोचना शुरू करें तो आप देखें कि दीन इंसान को सआदतमंद जिंदगी देने के लिए आया है, सआदत तक पहुंचाना है उसको। तो बस इंसान की जिंदगी में जो बुनियादी तरीन उनसुर है वो है सआदत, सआदत तक पहुंचना है। अब देखना यह कि इंसान इस सआदत तक कैसे पहुंच सकता है, कैसे हासिल होगी उसको यह सआदत, आया फलसफे का कोई किरदार है इसकी इस सआदत तक पहुंचने में या नहीं। अगर साबित हो गया कि इंसान बगैर फलसफे के सआदत तक पहुंच सकता है, खूब कह दिया जाएगा कि फलसफा एक अच्छा इल्म है, पढ़ लो तब भी फायदा है, ना पढ़ो तब भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर यह बात साबित हो जाती है कि फलसफा इंसान की जिंदगी में बुनियादी किरदार अदा करता है और उसकी सआदत के रास्ते में उसकी मदद करता है, तो यहां पर इसका होना जरूरी हो जाता है। तो लिहाजा आयतुल्ला मिसबाह हाफ़िज़हुल्लाह यहां बड़े खूबसूरत अंदाज में इब्तिदा करते हैं कि इंसान जब इस दुनिया के अंदर आता है तो जो होशियार, जो थोड़ा बहुत फिक्र करने वाला है, वो इस बात में डूब जाता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप देखें, कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा कि जो तफक्कुर करने वाला हो और वो ये ना पूछे किसी से कि हम क्यों खल्क हुए, इस कायनात को खल्क क्यों किया गया, दुरुस्त है, कहां से आए हैं हम, क्यों है यहां पे, और आया कहीं जाना भी है या नहीं जाना। और इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब एक रिवायत है, अगरचे मोतबर जो हदीसी किताबें हैं उसमें यह हदीस नहीं मिली, लेकिन मंसूब है, इमाम अली अलैहिस्सलाम से मशहूर है ये रिवायत कि रहिमल्लाहु इम्रअन आलिम मिन ऐन फी ऐन व इला ऐन, कि खुदा रहमत करे उस इंसान को कि जो जानता हो कि कहां से है, मिन ऐन कहां से है, फी ऐन कहां है, इला ऐन कहां जाना है, उसने उसको ये मालूम होना, मालूम हो अगर। तो आयतुल्ला मिसबाह फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान खाने पीने के पीछे है, अकल से उसने इस्तेफादा करना ही नहीं है, खुदा की इस नेमत से इस्तेफादा ही नहीं करना है, बात उनसे नहीं हो रही है। और ऐसे इंसानों को खुदाबंदे मुताल ने कुरान के अंदर क्या कहा है, उलाइका कल अनआम बल हम अवल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग चुपाए हैं, चुपायों की मानद हैं। फिर कहते हैं कि चुपायों से भी क्या हैं, बदतर हैं, नीचे हैं, पस्तर हैं, और ये वो लोग हैं कि जो गफलत का शिकार हो चुके हैं, यानी डूब चुके हैं अपनी मादी जिंदगी के अंदर। इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाने के वो हैं या नहीं हैं, कहां से हैं, कहां जाना है, कहां रह रहे हैं, अगर रह रहे हैं तो किन चीजों से इस्तेफादा करना है, किन से नहीं करना, इनको कोई ताल्लुक नहीं है इनसे। और ऐसा इंसान जो क्या है, उसकी हालत को कुरान इस तरीके से बयान कर रहा है, यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, कि वो चौपाइयों की मानिंद खा रहे हैं, जानवरों की तरह खाते हैं, और यतमत्ताउन यानी क्या कह रहे हैं, वो यतमत्ता तमत्तो करना, इस्तेफादा करना, बहरामंद होना। अब उर्दू में अब वो मुझे लफ्ज़ सही इसका याद नहीं आ रहा कि क्या इसका तर्जमा करेंगे, अगरचे आप कुरान के उर्दू तर्जमे की तरफ इशारा जाएंगे तो मिल जाएगा। ये तमत्तो और कहते हैं लज्जत को हासिल करना, तो ये यतमत्तऊना कि ये अपने उस चीज़ों से बहरामंद होते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। वयाकुलूना कमा तअकुलुल अनआम, और चुपायों की माने जो है वो खाते हैं। अगर ये लोग हैं, इनकी बात नहीं हो रही है, ये लोग तो अपने उस अक्ल की उस फिक्र से जो नेमत है उससे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई इंसान अक्ल रखता है जो कि है उसके पास, और फिर होशियार हो, तफक्कुर का अहल हो और तफक्कुर भी करे, तो उसके जहन में हतमन ये बात आएगी कि उसको ये जानना पड़ेगा कि कहाँ से है। और कहते हैं कि आज की दुनिया को अगर आप मद्देनजर रखें, तो आज की दुनिया सनअती इनकलाब के बाद मादियत के अंदर इतना ज्यादा डूब चुकी है कि अब हैरान और परेशान हैं। वो फिर कहते नजर आते हैं, हमें नहीं पता हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, कहां हमें जाना चाहिए, कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। इस किस्म के जो हैं वो बातें करते नजर आते हैं। इसी वजह से आप देखें कि वहां पे निहलिज्म का मकतब वजूद में आता है कि जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, जिंदगी बेमाना है, बस दुनिया में हो, लज्जत हासिल करो इससे और चले जाना है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात, जो इस मकतब का कायल हो जाता है, जो मादियत में इतना गिर जाता है और इस किस्म का तफक्कुर जो है नहीं कर पाता, वो के वो सोचे कि कहाँ से आया है, कहाँ जाना है उसने, तो जाहिर सी बात है कि ये बंदा, आप इसके सामने सवाल भी करेंगे तो उसकी अहमियत का कायल नहीं होगा। लेकिन फरमाते हैं कि ये सवालात तंग करते हैं ऐसे बंदे को कि जो सोचने वाला है, जो तफक्कुर की नेमत से माला माल है, जो अभी भी तफक्कुर कर रहा है, उसको ये सवालात तंग करते हैं। वो हतमन इन सवालों के जवाब के पीछे जाता है। खूब, अब हमने ये देख लिया कि इंसान आगाह, होशियार इंसान, मुतफक्किर इंसान, उसके जहन में सवाल आना ही आना है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा आगाज़ क्या है, मेरा अंजाम क्या है, मेरा मकसद क्या होना चाहिए, ये क्या है मेरा मकसद, उसको जानना चाहिए। तो कहते हैं अब जब ये बात वाजे होगी कि हर इंसान के जहन में ये सवाल उठते हैं, तो अब सवाल अगला ये आता है कि कौन जवाब देगा इसका। तो अब हमारे पास जितने उलूम मौजूद हैं, आप फिजिक्स की खिदमत में जाएंगे तो वो तो कहेगा मेरा तो ये मौजू ही नहीं है, मेरा मौजू है कि मैंने मैटर के बारे में बात करनी है, उसके हालात को बयान करना है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ये मेरे वजीफा ही नहीं है, मेरा हदफ ही नहीं है इल्म का। केमिस्ट्री के पास जाएंगे वो भी नहीं है, रियाजी के पास जाएं वो भी नहीं है। कोई भी इल्म जो है वो इन सवालों का जवाब जो है वो आपको देता हुआ नजर नहीं आएगा। तो फरमाते हैं इन तीन असासी और बुनियादी तरीन सवालों का जवाब आपको फलसफे से मरबूत एक शाख देगी। जो उलूम फलसफी की बात की थी हमने कि खुदा शनासी की जहां पर बहस होगी और खुदा शनासी से मरबूत जो बहसें हैं उसके अंदर आपको इनका सवाल मिलेगा। और हमने कहा था खुदा शनासी खुद क्या है, फलसफे की एक शाख है, कि जिसके अंदर रविश अकली को मद्देनजर रखते हुए इन सवालों का जवाब दिया जाता है। और फिर जब उलूमे फलसफी हैं कि जो इसका जवाब देंगे, मसलन खुदा शनासी की बहस है, तो हम पहले बात कर चुके हैं इस बात की कि खुदा शनासी की बहस से पहले आपको फलसफा उला पढ़ना पड़ेगा ताकि उन कवायद के तहत आप खुदा शनासी की बहस कर सकें। बस इन तीन सवालों का जवाब आपने हासिल करना है तो आपको फलसफा उला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं फलसफा उला के मसाइल के जरिए, कवायद के जरिए आप आकर दूसरे फलसफी इल्म के अंदर जाकर इन सवालों का जवाब तलब करेंगे। तो लिहाजा फरमाते हैं कि जब इन सवालों का जवाब मौकूफ है इस बात पर कि मुझे फलसफाए उला आना चाहिए, मेटाफिजिक का इल्म जो है उसको इल्म होना चाहिए मुझे, तो फिर कहते हैं कि जरूरी है कि हम क्या करें, फलसफी बहस करें, हस्ती शनासी की बात करें, दुरुस्त है कि जिसमें वजूद के बारे में बात हो, वजूद के कुल्ली अहकाम जिसमें बयान किए जाएं, ताकि उनके जरिए फिर आकर हम अपने मकसद तक पहुंच सकें। और फिर हमने ये बात भी बयान की थी कि हस्ती शनासी से पहले भी एक इल्म का होना जरूरी है, वो क्या है, मार्फत शनासी, एपिस्टेमोलॉजी बहस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले यह बात साबित करनी है कि अकल के अंदर यह ताकत है कि वो हकाएक को कश्फ कर सकती है, हिस के अंदर कितनी ताकत है हकाएक को कश्फ करने के लिए, वही आया अबजार बन सकती है हकीकत तक पहुंचने का या नहीं। यानी हम मार्फत शनासी में इल्म की बहस, इल्म को जो है वो मेहबर बनाकर उसके बारे में सवाल करते हैं और उनके जवाब तलब करते हैं कि इंशाल्लाह इस दर्स के बाद हमारी दो बहस शुरू होने लगी है। तो बस हस्ती शनासी से पहले जरूरी है कि आप शनाख्त शनासी, मार्फत शनासी या एपिस्टेमोलॉजी उससे बहस करें। जब ये चीज तय हो जाएगी कि आप अकली रविश के जरिए हकाएक को कश्फ कर सकते हैं, फिर आप आकर अकली रविश के जरिए हस्ती के बारे में बहस करेंगे, वजूद के बारे में बात करेंगे और वजूद के मुख्तलिफ कुल्ली अहकाम को बयान करेंगे। बस देखें मसला कैसे शुरू होता है और इख्तिताम गाम होता है कि आपको हतमन फलसफा पढ़ना है अगर आपको ये तीन जवाब चाहिए कि जो हर इंसान के जहन के अंदर आते हैं और वो तालिब है इसका जवाब, जवाब का कि उसको ये जवाब चाहिए। ये एक मतलब जो इन्होंने यहां पर बयान किया है। फिर जरूरत फलसफा में आगे बढ़ते हुए इस मतलब को बयान करते हैं कि अगर आप अपनी सोशल जिंदगी के अंदर नजर दौड़ाएं तो आपको इंसान बहुत हैरान और सरगर्दान नजर आएगा। ये इंसान कौन है? ऐसा इंसान है कि जिसने फजा को तस्खीर कर लिया है। ये वो इंसान है कि जिसने टेक्नोलॉजी की बदौलत फजा को तस्खीर कर लिया है। लेकिन यही इंसान के जो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, अपनी सोशल जिंदगी के अंदर यही हैरान और परेशान नजर आ रहा है। क्योंकि सोशल जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ निजाम चाहिए, सिस्टम चाहिए, तब इंसान की जिंदगी बेहतर चलती है। आपकी जिंदगी में पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, आपकी जिंदगी में इकोनॉमिक का सिस्टम होना चाहिए, आपकी जिंदगी में उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं इंसान के, मैनेजमेंट है मिसाल के तौर पे, एजुकेशन है, ये इस तरह की जो मुख्तलिफ शोबेजात पाए जाते हैं, इनमें सिस्टम चाहिए ताकि उन सिस्टमों के तहत एक मुआशरा जो है वो बेहतरीन अपने उस हदफ तक पहुंच सके जो इंसान का एक हदफ है, जो सआदत उसने हासिल करनी है वो सिस्टम और निजाम के अंदर हासिल कर सकता है, इसके अलावा वो हासिल नहीं कर सकता। चूंकि इंसान इज्तिमाई है, सोशल है, अगर आप बाज माहिरीन के जो है वो ताबीरें देखें, वो क्या कहते हैं, इंसान सोशल एनिमल है। लेकिन हम इस ताबीर से इत्तेफाक नहीं करते। एनिमल जो मुआशरे में मौजूद है, लफ्ज इससे मुराद वो हैवान जो चौपाया है वो मुराद होता है, दुरुस्त है। यानी ये सोशल एनिमल कहना मुआशरे के अफराद के जहन में ये तलकीन कर रहा है क्या कि इंसान का दर्जा वही हैवान वाला है, फर्क फकत यह है कि उसको सूझबूझ है, इसको जरा सूझबूझ नहीं है। यानी हैवान को है नहीं है, चौपाए को इसको उस किस्म की सूझबूझ इससे ज्यादा आती है, यानी बेहतर है, बुलंदतर है इसमें आकर। हम हैवान से मुराद जो मंतिक या फलसफे में इंसान को तारीफ किया गया हैवान नातिक के साथ, उसका तर्जमा क्या किया गया है? एनिमल। हैवान से मुराद यहां पर एनिमल मुराद नहीं लिया जाता जो कि मुआशरे में राएज है। हैवान से मुराद यह है कि जिंदा हयात रखने वाला। लेकिन बिलाखर चूंकि ये जो माहिरीन इंसान शनासी पे जिन्होंने काम किया है, मुख्तलिफ थ्योरियां, मुख्तलिफ जो है वो फर्जिए जो है वो सामने लेकर आए हैं और इंसान की तारीफ की है मुख्तलिफ जिहाद से, तो वो इन दिक्कतों से आगाह नहीं थे, तो उन्होंने इंसान की तारीफ की सोशल एनिमल। और अगर आप इंसान को मादी जंबे के अंदर, मादी पहलू के अंदर मुनहसिर कर देंगे और इंसान को यही बदन मानेंगे कि जो इंसान के सामने है, तो फिर बात दुरुस्त है कि इंसान सोशल एनिमल है, क्योंकि अभी कुरान की आयात आपकी खिदमत में बयान की हैं कि अगर आप फकत मादी सोच रखेंगे और अपने आप को मादी मानेंगे और दुनिया को मादियत के अंदर मुनहसिर मानेंगे, तो आपका काम फकत और फकत जो है वो चुपायों वाला होगा, खाना पीना सोना और इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। लेकिन हम इंसान की बर्तरी के कायल हैं, इंसान का मर्तबा दूसरे जानदारों से बुलंद है। तो लिहाजा बारह जब इंसान सोशल है, इज्तिमाई है, तो इसको मुख्तलिफ सिस्टमों की जरूरत है। तो कहते हैं जब हम अपनी जिंदगी में जाकर देखते हैं, मुआशरों को देखते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम सामने आई भी और इंसानों ने मुख्तलिफ सिस्टमों को बुनियाद यानी बनाया और उसके मुताबिक जिंदगी चलाने की कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं एक सिस्टम आता है, जोर शोरोगुल होता है उसका, और बाद में जाकर देखते हैं कि कुछ ही अरसे बाद शोरोगुल हो जाता है, यह नाकाम है, गलत है। कभी आपको कैपिटलिज्म नजर आएगा, कभी आपको मार्क्सिज्म नजर आएगा। कैपिटलिज्म जब सामने आया तो उसको मुआशरे को चलाया, बाद में कहा कि ये बदतर है। मार्क्सिज्म जो है वो सामने आया, मार्क्सिज्म ने कहा कैपिटलिज्म गलत है, ठीक है, और कहा कि हम ठीक हैं। लेकिन मार्क्सिज्म जहां पर इजरा हुआ वहां भी जाकर देख लिया कि वो भी इंसान को वो सआदत नसीब नहीं कर सका, अता नहीं कर सका जो तालिब है, इंसान की फितरत जिसकी तालिब है। बस जितने भी इज्म हैं इस वक्त हमें पूरी दुनिया के अंदर नाकाम नजर आते हैं। आपको हर जुमा नजर आ रहा है इस पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो साख्ते बशर सिस्टम जो हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। और वो सिस्टम किस फिक्र और बुनियाद पे चल रहे हैं? मादियत। इंसान को मुनहसिर कर दिया मादियत के अंदर और फिर इस इंसान के लिए मुख्तलिफ सिस्टम निकाले उन्होंने, तो जाहिर सी बात है ये सिस्टम कभी भी इंसान को सआदत नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक पहलू को तो जो है वो इर्जा कर देते हैं, एक पहलू की जो जरूरियात है वो तो पूरी कर देते हैं, लेकिन दूसरा पहलू महरूम रह जाता है। और इंसान के जो दो पहलू पाए जाते हैं उनका आपस में राबता है, अगर एक पहलू डैमेज हो तो दूसरा पहलू लाजमी मुतासिर होता है। अगर आप फकत मादियत मादी पहलू की तरफ तवज्जो करके फकत सिस्टम देंगे तो रूहानी पहलू डैमेज होगा, और रूहानी पहलू जब डैमेज होगा तो उसके असरात इंसान की इस मादी जिंदगी पर भी पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर पढ़े लिखे अफराद भी क्या हैं, खुदकुशियों के ऊपर तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सआदत को समझा था इस मादी पहलू के अंदर, मादी सिस्टम को जो है वो इजरा किया था, उसके जरिए उस कोशिश की कि उस सआदत तक पहुंचे, लेकिन उसको मुकम्मल इजरा करने के बावजूद इंसान को वो इत्मीनान हासिल नहीं हुआ कि जो वो चाहता है। तो अब वो आकर कहता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, ना उम्मीदी उसके अंदर आ जाती है, निहिलिज्म का मकतब फिर निकाल देते हैं आकर। निहिलिज्म आकर क्या कहता है? कोई माना नहीं है जिंदगी का। तो ये चीज आकर बयान करते हैं। फिर क्या करें? फिर सिस्टम कैसे वजूद में आए? कहते हैं सिस्टम बनाने के लिए जरूरी है कि आप इंसान की जो फितरी साख्त है, स्ट्रक्चर जो फितरी तौर पर है, उसकी तरफ तवज्जो रखें। इंसान के तमाम वजूदी अबाद और वजूदी पहलुओं को मद्देनजर रखें, उसके हदफ़े खिलकत को मद्देनजर रखें, उन अवामिल की शनाख्त हासिल करें कि जिन अवामिल के जरिए ये इंसान अपने आखिरी हदफ तक पहुंच सकता है, उसको पहचानें। जब ये सारी चीजें आप पहचानेंगे, तब आप एक जामे सिस्टम बना सकते हैं कि जो इंसान की तमाम जरूरियात को पूरा कर सकता है। तो ये शनाख्त किसके हाथ में है? अगर बशर तनहा हो बस, तो ये इंसान की मुकम्मल मारिफत हासिल नहीं कर सकता। हत्ता बाज माहिरीन ने ये कहा है कि इंसान एक ऐसा हैवान है कि जो ताज्जुब आवर है। हम ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि ये एक हैवान है और एक बहुत ही अजूबा किस्म का, यह ताज्जुब आवर है। मसलन कोई शनाख्त नहीं है हमें इसके बारे में। आज कौन सा ऐसा मकतब है, इज्म है, कि जो ये दावा कर सके कि इतने हजार साल के माहिरीन की मेहनत का नतीजा ये निकला है कि हम आज इंसान को 100% जानते हैं? कोई है इज्म आपके मुताले में? नहीं। इंसान एक अजीबो गरीब मखलूक है कि जिसको बशर तनहा खुद अपने वसाइल को बुरुए कार लाते हुए, उस पर एतमाद करते हुए उसको नहीं पहचान सकता। तो फिर क्या करे? तो फिर देखे, पहचाने कि इसका खालिक कौन है। क्यों? अब यहां पर आकर वो बात समझ आते। अब जब देखा कि पेचीदा है बहुत ज्यादा ये इंसान, तो इस पेचीदगी का हल कैसे निकालें? हम देखें प्रोडक्ट किसकी है, इसको बनाया किसने, इसका खालिक कौन है, उसकी शनाख्त हासिल करें। और फिर जब उसकी शनाख्त हासिल हो जाएगी, फिर हम ये शनाख्त हासिल करें कि इस खालिक ने इस इंसान के लिए कोई नमूना छोड़ा है, लिखा हुआ कि ये इंसान क्या है। जैसे आप देखते हैं मार्केट वाले जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मसलन आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को मद्देनजर रखें, वाशिंग मशीन बनाई है, टीवी बनाया है, जो भी है, तो उसके साथ हिदायत का एक पेपर बीच में रख देते हैं ताकि इंसान उस हिदायत के मतहत जो है वो जान सके कि अगर कहीं मुश्किल पेश आ जाती है उसको हल कैसे करना है, उसकी साख्त के ऊपर जो है उसको मारिफत हासिल हो जाए। तो अब जब खुदा की शनाख्त हासिल हो जाएगी, तो फिर हमें यह देखना है कि आया खुदा ने वो हिदायत इंसान के बारे में भेजी है कि इस इंसान को अगर किसी चीज की जरूरत हो, तो उसके लिए अगर कुछ सिस्टम बनाना हो, तो हम उस हिदायत के तहत बना सकें। जाहिर सी बात है हमें फिर वो चीजें जो है वो जानने की तरफ चले जाएंगे। और फिर जब हमें इन चीजों की शनाख्त हासिल करेंगे, तो हमें जब खालिक पता चल जाएगा, जब हमें उसकी हिदायत के मुताबिक जो है वो किताब मिल जाएगी, और उसके जरिए फिर हमें पता चल जाएगा कि इंसान का हदफ निहाई क्या है, कौन सा ऐसा रास्ता है कि जिस पर चलेगा इंसान तो अपने हकीकी और निहाई हदफ तक, आखिरी हदफ तक पहुंच सकता है। तो आप कोई भी उसके ऊपर सिस्टम बनाएंगे, वो सिस्टम इंसान को जो है वो बिल्कुल मुतमइन करेगा, उसको हकीकी सआदत तक पहुंचाएगा, उसकी जिंदगी को माना अदा कर देगा, निहलिज्म जैसे तफक्कुर से बाहर आ जाएगा, मादियत से बाहर आ जाएगा। बस आपने देखा मुख्तलिफ सिस्टम आइडियालॉजी के जरिए बनते हैं, और आइडियालॉजी उस वक्त तक सही नहीं हो सकती जब तक इंसान का वर्ल्ड व्यू सही ना हो। यानी आइडियालॉजी आपने सिस्टम बनाने हैं इंसान की जिंदगी के लिए आइडियालॉजी की बुनियाद पर, और आइडियालॉजी कब तश्कील पाएगी सही माना में, कि जब आपकी जहानबीनी ठीक होगी, जब आपके वर्ल्ड व्यू ठीक होगा। खूब, आप जहानबीनी में आ जाते हैं। जहानबीनी में क्या होता है? फिर वही सवाल आता है कि जो हम पहले बयान कर चुके हैं, कि जहान बीनी के अंदर ये बुनियादी सवाल होते हैं कि जिसकी तरफ इशारा किया है, तो फिर पलटकर बात कहां आ जाती है, फलसफे की तरफ आ जाती है कि इंसान को जहान बीनी और वर्ल्ड व्यू फलसफा अता करता है, क्योंकि जहान बीनी में वजूद और हस्ती के बारे में बात की जाती है और हस्ती के बारे में बात करने वाला इल्म एक ही है, क्या? फलसफा। फलसफा है जो वजूद के कुल्ली अहकाम को बयान करता है। बाकी उलूम अगर हस्ती से बात करते हैं तो खास हस्ती से बात करते हैं, हस्ती के कुल्ली अहकाम कोई भी इल्म बयान नहीं करता। वो काम फकत किसका है? फलसफा उला का, मेटाफिजिक का। तो लिहाजा जरूरी है कि अगर आप आइडियोलॉजी तक भी पहुंचना चाहते हैं और आइडियोलॉजी की बुनियाद पर सिस्टम भी बनाना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी जहानबीनी ठीक करना होगी। और जहानबीनी के अंदर सबसे पहला कदम यह है कि आपको हस्ती के बारे में कुल्ली अहकाम जो उसके हैं वो पता होने चाहिए। इस कायनात पे कौन से कवानीन हाकिम हैं, उसको जानेंगे, फिर उसके बाद अगला मरहला आएगा, आप खास हस्ती की तरफ जाएंगे और फिर आइडियोलॉजी और फिर सिस्टम। तो बस मालूम हुआ कि आप हतमन जो हैं वो फलसफे की तरफ मोहताज हैं। तीसरा रास्ता फिर आकर बयान करते हैं कि तीसरा रास्ता भी मौजूद है कि जिसके जरिए हमें फलसफे की जरूरत और अहमियत मालूम होती है। वो क्या है? वो ये है कि इंसान को अगर हम बाकी हैवानात के साथ मुकायसा करें तो हमें एक चीज जो मिलती है वो ये है कि बाकी जितने हैवानात हैं उनके पास अक्ल नहीं है और इंसान अक्ल रखता है। और अक्ल का बुनियादी काम क्या होता है? तफक्कुर करना, जुस्तजू, तहकीक। आप देख लें, इंसान चाहे इब्तिदाई मरहले में ही क्यों ना हो, उसके अंदर जुस्तजू का मादा पाया जाता है। आप देखें कि बच्चा क्यों ज्यादा सवाल करता है, चूंकि उसको मालूमात कम होती हैं, मजहूलात उसके ज्यादा होते हैं, तो लिहाजा जैसे ही किसी चीज को देखता है वो फौरन उसके सवालात करता है। क्यों सवाल कर रहा है? क्योंकि जुस्तजू रख, वो उसके अंदर फितरती तौर पर ये जज्बा मौजूद है कि वो सवाल करे। जुस्तजू का जज्बा है, जुस्तजू की उसकी फितरत ही जुस्तजू वाली है, वो हकायक को कश्फ करना चाहता है। आप देखें, जानवरों के अंदर ये कोई नहीं है, किसी भी जानदार के अंदर यह सिफत नहीं पाई जाती। बस हकीकी इंसान उस इंसान को कहते हैं कि जो अपनी अकल को क्या करे, इस्तेमाल करे, कहां पर? अपनी जिंदगी के बुनियादी तरीन मसाइल के हल में। उसको कहेंगे ये अकल इंसान है, उसको कहेंगे कि ये अपनी अकल से सही इस्तेफादा कर रहा है। और जब हमने देखा कि इंसान के बुनियादी तरीन मसाइल कौन से हैं, उसके बुनियादी मसाइल यही हैं, मैं कहां से आया हूं, मैं यहां क्यों हूं, मेरा क्या वजीफा और हदफ बनता है इस यहां पर होने का, और मैंने कहीं जाना भी है या नहीं जाना, मेरा कोई हदफ है या हदफ नहीं है, अगर हदफ है तो वो कौन सा हदफ है। अगर कोई इंसान इन बुनियादी मसाइल में अपनी अकल को बुरुए कार नहीं लाता तो वह इंसान आकिल नहीं है, वो फिर उन्हीं चौपायों की मानद है कि कुरान उसको कह रहा है कि बल हुम अज़ल, बल्कि उन चौपायों से बदतर है। क्यों? चौपायों के पास तो अकल नहीं है, इसके पास अकल होते हुए भी वो चौपायों वाला काम अंजाम दे रहा है, तो बल हुम अज़ल होना चाहिए इसको, उनसे ज्यादा पस्तर होना चाहिए इसको। बस मालूम हुआ, नतीजा हमारी इस बहस का ही निकलता है इन तीन वजूहात की बुनियाद पर कि इंसान अगर फलसफा न पढ़े तो न वो फर्दी सआदत तक पहुंच सकता है और ना ही वो इज्तिमाई सआदत तक पहुंच सकता है। और फिर जाहिरी सी बात है कि इंसान अपने हकीकी कमाल तक भी नहीं पहुंच सकता। क्योंकि उसका ये कमाल मौकूफ है कि उसको ये बुनियादी मसाइल का जवाब आता हो। बुनियादी मसाइल का जवाब उस वक्त मिलेगा जब वो हस्ती शनासी को जानता हो और हस्ती शनासी की बहस फलसफा करता है। अब कह लें कि मुख्तसर सा फर्क किया कर सकते हैं, मुख्तलिफ दीद से आप अगर देखना चाहें तो सआदत और कमाल को आप जुदा कर लेंगे। मसलन चूंकि मसला आप ये देख लें कि अगर आप कमाल को नहाई कमाल को देख रहे होंगे तो वहां पर कमाल और सआदत जो है वो क्या है वो मुसावी नजर आएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि जुज़ई तौर पर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कमाल है, लेकिन अगर आप फकत इसी पर इक्तफा करेंगे तो आप सआदत तक नहीं पहुंच सकते। तो इस एतबार से जो है वो फर्क नजर आएगा उसमें। तो भारत ये था फलसफे की जरूरत के ऊपर बाज़ अहम नुकात के जो आप खिदमत में बयान किए हैं। इसके बाद जनाब आयतुल्लाह मिसबाह हाफ़िज़हुल्लाह जो है वो हमारे इन बयान करदा मतालिब पर जो इश्कालात हो सकते हैं, एतराजात हो सकते हैं, उनका जवाब देते हैं। हमने यहां तक क्या कहा, फलसफा जरूरी है। अगर आप फर्दी जिंदगी में सआदत चाहते हैं, अगर आप इज्तिमाई जिंदगी में सआदत चाहते हैं, अगर आप कमाल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको फलसफा पढ़ना है। अब इसके ऊपर सवालात उठते हैं, क्या आप बगैर फलसफे के इंसान नहीं पहुंच सकता? तो मुख्तलिफ सवालात उठाते हैं यहां पर, उसका जवाब देते हैं और इंतहाई अहम नुकात हैं ये भी, इंशाल्लाह इसको फिर बाद में देखते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।